माह होती है ना, इसको कहते हैं चंद्र ग्रह। एकदम शरीर सुख गया, मरने मरने हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी इस लड़के को आप जीवन बर्बाद कर देंगे, ये मर जाएगा, आप दीक्षा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करने चाहिए, जीव पर दया करने चाहिए, इस बच्चे को आप दीक्षा दे दीजिए। तो उनके बहुत कहने से तब फिर उनको दीक्षा दी, यज्ञ कराया, बस कान में मंत्र दे दिया, बस यही हो गई थी। महापुरुषों का ऐसा ही होता है, ये सब जनेऊ डाल करके, यज्ञ करके, ये सब आहुति दे करके, वो दंड ले करके, इधर ये सब उन लोगों को अतीत है, महामनीय है ना, परमहंस है, बस शक्ति का संचार कर दिया और ये तो मुझे सिद्ध है। इस प्रकार से इन्होंने दीक्षा, दीक्षा के दूसरे वर्ष में भक्ति विनोद ठाकुर जी गस्तों चले गए, प्रकट हो गए, और उसके दूसरे वर्ष में ये भी अप्रकट। तब इसके बाद इन्होंने आराम आदमी संप्रदाय के अनुसार में त्रिदंड इन्होंने संन्यास, और उसके बाद में भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचार। उनके पहले शिष्य एक कलकत्ते के बड़े भारी जज थे, सुनो हम जो कह रहे, एक जज साहब थे कलकत्ते में, उनका एक अपना भाई को या भतीजा या क्या करते, वो भतीजा था पर विद्वान, वो कोई बड़ा अफसर था आईपीएस, उसको स्वप्न मिला और स्वप्न में प्रभुपाद जी को देखा, और स्वप्न में देख करके अब उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, जो उनसे हमने गुरु दक्षिणा ली है। तो खोजते 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 अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा जैसे जाओ तो राम भवन एक है कलकत्ते में, यहाँ पर विभक्ति विनोद ठाकुर जी का भवन, वहां पर जाकर के देखो तो एक युवक है, बहुत भजन परायण तत्वविद है, उसको देखाओ तो आपसे दिखा था वही, कहिए हम आपसे गुरु दक्षिणा लेंगे और किसी से नहीं, क्योंकि हम अभी गुरु दक्षिणा किसी को देते नहीं। तो वो एकदम जिद करने लगे, तब अंत में बात होगा कि सबसे पहले इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे बहुत विद्वान आदमी, वो संस्कृत और अंग्रेजी विषय के माने हुए राइटर थे, उनका नाम था संन्यास पर होने पर उनका नाम कुछ और था मुझे याद नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी ये दैव वर्णाश्रम धर्म का प्रचार हो और संन्यास भी हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके हमको भक्ति विनोद ठाकुर के लाइव में हमको संन्यास दीजिए। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, उनकी उम्र थी करीब करीब उस समय में 60 वर्ष थी और प्रभुपाद की उम्र कम थी, तभी उन्होंने उनको संन्यास दिया। ये पहले उनके संन्यासी थी, और महिला ने सबसे पहले उनकी शिष्या हुई सरोजवासिनी, वो महिलाओं को दीक्षा नहीं देंगे, तो उसने कहा कि महिलाओं ने क्या कसूर किया है, आप उनको उन लोगों का भगवान का भजन में अधिकार नहीं है, ये यदि आप हमको किसी शास्त्र से दिखला दे जब महिलाएं भजन नहीं कर सकती हैं और सदगुरु नहीं पदार्पण कर सकती हैं, तो मैं आपसे दीक्षा नहीं, आप छोड़िए, आप हमको किसी शास्त्र से कोई भी प्रमाण दीजिए। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, ये तो साधारण महिला नहीं है, तो उसको पहला महिला शिष्य उनको दीक्षा। इस प्रकार से धीरे 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 समस्त भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाद पश्चात देशों में आज सर्वत्र उनका ये सब लगाया हुआ वृक्ष सब जगह फैल करके भक्ति का प्रचार, उन्हीं के कृपा से भक्ति प्रदीप भक्ति का प्रदीप और दस नामी सन्यासी उनका। इस प्रकार से सारे भारतवर्ष में प्रचार करते करते मथुरा में भी एक मठ था, विश्राम घाट में उन्होंने किया था किराए के मकान पर, जब हम लोग आए गुरु जी ने यहाँ प्रस्थापित किया तो वो मठ टेमटी में आ रहा था और वो दूसरे लोगों के हाथों में आ गया जो प्रभुपाद को छोड़ चुके थे, इसलिए गुरु जी ने यहाँ पर देख करके आश्रम किया और यहाँ से सर्वत्र प्रचार हुआ। वृंदावन में भी सारे उत्तर भारत वर्ष में हर द्वार में सर्वत्र इन इनकी महिमा के संबंध में हम लोग शाम को 4 बजे से आरंभ करेंगे। आप लोग अभी यहाँ पर आरती होगी, आरती होने के बाद में जो लोग पुष्पांजलि नहीं किए हैं वो लोग पुष्पांजलि अभी दे लेंगे। इधर में आरती होगी वो यशोमती नंदन आप लोग जब वो नवदीप में फकीर और ठाकुर उनको लाए तो वहां एक अखड़ साधु रहते का नाम था बंसीदास गौड़ किसी को परवाह नहीं था, यहाँ तक कि बच्चों के साथ झगड़ा भी करते थे बंसीदास गौड़ गंगा के किनारे उन नौका में जो ऊपर से लगा दिया जाता है ना उसी को किसी कहीं इनको मिल गया तो उसी को रख दिया, बस उसी में रहते हैं पूरा संसार घर द्वार नहीं। और एक पेड़ था कनेर का, उसमें 12 महीने फूल होते हैं तो वो उस कनेर पर जाकर के फूल छोड़ते और गौर नित्यानंद नम से रखते थे होती थी वो नंगे रहते थे, कभी अपना कोई कपड़ा खास कर पहना भी आया या नहीं पहनाया, 5 दिन तक भोग नहीं लगाया, एकादशी के दिन एकादशी नहीं किया और पीछे 4-5 दिन के बाद में
लगातार
5-6 दिन एकादशी कर दी। बाबा जी क्या है आज एकादशी है, उनको भूख नहीं रहा तो फूल तोड़ रहे थे। तो एक लड़का आया जैसे बाबा जी तुम यहाँ से रोज क्यों फूल तोड़ता है, सब तेरे बाप का है, सब तेरे बाप का है, बस वो चढ़ रहे थे तोड़ रहे थे बात किया तुम ऐसे धक्का दे दिया तो गिर पड़े तो पैर में चोट आ गई। तो नित्यानंद जी को और गौ दोनों को गाली देते ही अपने लौट गए। ऐसे ये बदमाश अभी है
महाप्रभु
सीधा है,
महाप्रभु सीधा है,
सीधा है और ये
नटखट है, इसने गिरा है,
इसने लड़कों के साथ आके हमको गिरा। अब तुम लोग को हम न भोजन कराएंगे न स्नान कराएंगे कुछ भी, हम लोग देखेंगे तो क्या करता है। ठाकुर जी से झगड़ा कर दिए, अभी रोते हैं झिझक हैं और फिर उनका और ऐसे जो यहाँ रहते थे भजन स्तुति के सामने देखा कि लोगों की बड़ी भीड़ आती, अरे बाबा जी हमको पुत्र चाहिए धन चाहिए हमारा ये है वो, इसलिए मछली के कांटे और मछली का छिलका काली कहीं व्यक्ति घर में पड़ा रहा था ले आकर के अपने सामने रात में छिड़क दिया, जो लोग हमारे पास नहीं आ रहे ये पहचान। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जब नवदीप ने इनको लेकर के मायापुर में बैठ लाया तो इनको साथ लेकर के उनके पास में तो इन्होंने उठ करके भक्ति विनोद ठाकुर को अभिवादन की, इनको आदर दिया, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी नारद इत्यादि को सम्मान देते उस पर इनको सम्मान दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने इनका बोलते इस बच्चे का पिता सब दोनों में सख्त था। अब जब कभी होता जब सुनते ये प्रभुपाद जी का शिष्य है तो उसको बड़ा आनंद था। हमारे गुरु जी संन्यास लेने के बाद में मुझसे मिलने के लिए उसमें प्रभुपाद के अप्रकट होने थे, हमारे गुरु जी तो धन महाराज जी के संन्यास प्रभुपाद 3 बार संन्यास देना चाहे तो भक्ति विलास सिर्फ महाराज जी ने संन्यास नहीं होने दिया, वो मैनेजर थे और उम्र में बहुत अधिक थे, तो बातचीत बहुत पहले से चला था। मैंने कहा ये जब सन्यास ले लिया है तो यहाँ का काम कोई भी सब नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाए, तो सब में चला जाएगा, यहाँ पर बैठे जाता हूँ। इसलिए तीन तीन बार अंत में जब गुरु महाराज वहां से चले आए ना, उसे तब उनको स्वप्न में प्रभुपाद जी ने कहा अभी तक तुमने संन्यास नहीं लिया, हमारा सब कपट हो रहा है, कीर्तन इत्यादि प्रचार बंद हो गया, हमारी पत्रिका बंद हो गई, परिक्रमा बंद हो गई, सब कुछ करो जल्दी से संन्यास। तब वो संन्यास लेने के बाद में उनके पास में गए, उन्होंने पूछा जी तुम कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सिखाता हूँ, बड़े प्रसन्न और बोले क्या एक उल्टी उल्टी भाषा में पूर्व बंगाल की भाषा
उनकी सेना जनरल की सुनना,
पंक्ति से सेना से पंक्ति से सेना जनरल
सेना
एक लकड़ी में कपड़ा लगा देने से ही संन्यास नहीं होता। संन्यास कैसे होता है, अपने मन को भगवान के चरणों में लकड़ी में लगाने से और अभिमान हो जाता है, भजन करना ये सब गुरु की तरह से दो चार ऐसे बात बोले हमसे ये हमको अभिमान था। जो मैं वेदांत दर्शन का एक प्रमुख ज्ञाता हूँ और सभी लोग उनको वैदांतिक पंडित कहते हैं, किंतु उनको बात को हमको समझने में 6 महीना लगा, ऐसे सब लोग भजन किए हो उनकी बात देवता लोग नहीं समझते, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं। तो फिर प्रभुपाद के पास में जो आते थे बंसीदास बाबाजी महाराज के पास में या गौत किशोरदास महाराज, जब गौत किशोरदास बाबाजी महाराज जी का जब वो प्रकट लीला में प्रवेश कर गए, तो वो आप लोग तो सभी जानते हैं नवदीप में एक धर्मशाला है वहीं पर रहते और वहीं पर रह करके आश्रम तो कोई जीवन में बनाया ही नहीं, धर्मशाला में कोई टूटी फूटी पुथरी उथरी थी उसी में जब आते थे तो वहां पर ठहर जाते। तो लोग जब तंग करने लगे, तंग माने क्या भजन के समय उनको इधर उधर की बातें पूछना, बड़ा उनको दुख होता था, इसलिए पैखाने में वो जाकर के छिप गए, उसमें में पैखाना आ जाता नहीं, तो जमादार लोग कमाते थे पैखाना निकालते थे, पैसा भी सड़ गया, दुर्गंध हो गया, कीड़े सब सफेद सफेद उसमें लग जाते थे, बड़ा दुर्गंध होता था, सभी लोग उसमें जाते। नवदीप में हम लोग बहुत दिन जब आए सब लोग चले गए, गाँव में तो खेतों में सब लोग चले जाते, तो उसमें पैखाना करते थे ऊपर जाकर के और उसका दरवाजा बंद कर लिया खूब अच्छी तरह से, और उसी में पैखाना नीचे सड़ रहा है दुर्गंध हो रही है उसी में रह करके, वो कहते हैं विषय लोगों की गंध हमको आती है, इसमें हमको विषय का गंध नहीं है, पैखाने का गंध खूब आसानी से कहा जाएगा, किंतु विषय लोगों का संग का गंध ये कहा नहीं, उसका भजन ही प्रकट हो। इसलिए तो बतलाया है भले ही आग में जाना पसंद है मर जाना पसंद है, बरम भूतवा द्वारा पंजाम से तो बल्कि भले ही आग में जल करके मर जाना अच्छा है, किंतु विषयी लोगों का संग नहीं होना चाहिए। विषय किसको कहते हैं, जो भगवान का भजन भी विषय की बुद्धि के लिए ही करते हैं, ऊपर से खूब भक्ति दिखाएंगे उनको किसी लिए यहाँ पर उठी गए, वो पैठाने में चले गए, दरवाजा नहीं खोलते थे, यहाँ तक कि पीछे से जब मालूम पड़ा के चेयरमैन को तो वो बैठ सुनवाने के लिए नहीं खोला। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को खबर मिल गई, वो लोग भी आए और दरवाजा खुलवा रहे थे। अरे आमा आमी खोलते पाए, आमार शरीर खूब असुस्थ, उससे नहीं खोला। फिर वो लौट गए और हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गवर्नर को राष्ट्रपति को बुला करके हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारी सभा में आ गए, हमारा प्रचार हो जाए। और वो आकर के मायावाद की बात करता है, सबको सुना करके चला जाता है। तो अभी हम संतोष करते हैं कि हाँ हम सभा में इतने आदमी आए और बड़े बड़े लोग आए, मुख्यमंत्री और कौन था। वो लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए आते हैं, हरी सभा सुनने के लिए छोड़ गए। हमारे गुरु जी भी कभी नहीं बुलाते, हम लोग भी किसी को नहीं बुलाते। इसी तरह से वो आए सुनवाए नहीं खोले चले गए। कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरु जी और उनकी बुआ जी सरोज की सीमा और एक ये थे गृहस्थ, उनको पीछे से सन्यासी कालिंदी महाराज द्वारा वो राम गोविंद भक्ति शास्त्री ये सब लोग गए उनका दर्शन करने। उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज जरा दर्शन दें, हमारा शरीर और सुस्ता नहीं खोलते पार्वन, मैं नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के आशीष हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तब दौड़ करके आकर के खोल दिया और उनको। इसलिए कहते हैं आश्रलिया के भजे मरे अकार, जो कृष्ण और कृष्ण भक्तों का आश्रय लेकर के भजन करता है कृष्ण नहीं छोड़ते, और जो लोग शुद्ध भक्तों का आश्रय नहीं लेकर के भजन करते हैं अत्यंत आतंक की जिंदगी वर्ती कर, तो भगवान उनको ग्रहण नहीं करते। और कमी भी है किंतु वैष्णव शुद्ध वैष्णव का आश्रय और दूसरे शुद्ध गुरुदेव का आश्रय लेकर के भजन करते हैं, तो भगवान को उनकी दया। तब छोड़ दिया तो वो गए। तो गुरु महाराज जी हम लोगों से भी रोते रोते कहते थे, बाबा जी ने कहा हम तुमको आशीर्वाद करते हैं और तुम्हारे जीवन की जितनी आपदाएं विपदाएं हैं सब मैं ले रहा हूं, तुम भजन करना दृढ़ता से निर्भीक होकर के भजन करना। गुरु जी कहते थे इसीलिए हम जहां कहीं भी गए निर्भीक होकर के हमने सीखा, कहीं किसी को डर नहीं किया। मेदिनीपुर में 24 परगना में आसाम में कहां कहां उन्होंने प्रचार किया, बड़ी बड़ी विपदाएं आई, लोग उनको मारने के लिए सब हम लोगों को मारने के लिए उनके साथ में गए थे आसाम में और इस जगह एकदम निर्भीक होकर उनकी कथाओं का कभी नहीं डरते। और लिखते भी वैसे निर्भीक लेखक भी थे, तो कहते थे कि दोस्त महाराज जी की कृपा से इतनी विपत्ति आई किंतु हमको कुछ भी नहीं करते, और उन्हीं की कृपा से हम भजन करते हैं और भजन करते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है, बृहद मृदंग की स्थापना कर सर्वत्र बंगाल में बाहर में सर्वत्र महाप्रभु की विचारधारा को, एक थी दैनिक नदिया प्रकाश, नदिया प्रकाश मैंने किया महाप्रभु नदिया नदिया प्रकाश, और दूसरा था साप्ताहिक गौरीय, और तीसरी थी मासिक गौरीय, बंगला में तीन, एक दैनिक नदिया प्रकाश और एक गौरीय साप्ताहिक और एक मासिक गौर, हिंदी में श्री भागवत भागवत पत्रिका, जिसको हमने पीछे से चलाया करीब 22-25 वर्ष तक चली। इसके बाद में स्वामी जी चला गया, हम भी अस्वस्थ हो गए, बंगाल चले गए गुरु जी महाराज जी के पास। अब तुम लोग जो ज्ञानी है यदि चलाओ तो ओम प्रकाश जी अब जल्दी से रिटायर होने वाले हैं, वो घर छोड़ करके चले आएंगे और बोल रहे हैं वो सब लोग हैं, तुम लोग योग्य व्यक्ति है, तुम लोग भागवत पत्रिका ठीक से चलाना, और जैसे हम लोग ग्रंथ प्रकाश इत्यादि कर रहे हैं ऐसे प्रकाश करके घर घर में खूब सब प्रकाशित नहीं सकते, इसके द्वारा बहुत स्थायी रूप से प्रभुपाद जी कहते थे कि एक बार निशिकांत संज्ञान उनके एक शिष्य थे, निशिकांत संज्ञान वो पहले बंगाल यूनिवर्सिटी में और पीछे से कटक चले गए चैलेंजर कॉलेज या क्या नाम वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के थे। उस समय उनको कितने हजार रुपया महीना मिलता, बहुत तेजस्वी व्यक्ति थे वो। गुरु जी से शिक्षा लेने के बाद में प्रभुपाद जी से उनको जो कुछ रुपया, पहले पटना यूनिवर्सिटी में थे, पटना बिहार यूपी और बंगाल तीनों मिलाकर के एक यूनिवर्सिटी, तो उसके वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो वो ऐसे थे उनको जो कुछ महीना मिलता वो सब मनी ऑर्डर करके प्रभुपाद जी के पास में। प्रभुपाद जी देखते जी से इसके घर के सब बच्चे हैं और सब हैं, कैसे क्या करेंगे, तो उनमें से 10-15 रुपए रख करके और बाकी सब उसके स्त्री के नाम से, उनके पार्टनर ने उन्हीं के केयर अप में उनकी स्त्री को भेज दिया था, किंतु वो सब रुपया जरूर भेजते। और ऐसे विनय और दंड संपन्न थे कि प्रभुपाद जी जा रहे हैं सम्मान लिया ट्रेन से जा रहे हैं और उनके 50 सैकड़ों शिष्य सब उनके साथ में जाने के लिए उतावले हैं, सब चल रहे हैं जा रहे हैं। एक बार वो मायापुर जा रहे थे कलकत्ते प्रभुपाद, तो सियालदह स्टेशन पर बड़ी भीड़ हो गई उनके शिष्यों की, कम से कम 500-700 आदमी है, तो सब लोग डिब्बों में चल रहे और वो प्लेटफार्म पर चुपचाप खड़े, किसी ने नहीं कुछ कहा कि चलो तो, और प्रभुपाद जी ने नहीं कहा तो चुपचाप। जब गाड़ी भी चल दे दिया तो लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी वो निशिकांत संन्यास जी खड़े हैं, तो खड़े क्यों हैं, वो आ क्यों नहीं जाता, तो जब आप नहीं आदेश देते इसलिए नहीं जाना। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको इशारा करके बुलाया, तब वो आए बिना उनके आदेश के, कुछ भी नहीं करते संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। उन्होंने सरस्वती जय श्री उन्होंने एक पुस्तक की और एक किताब लॉर्ड चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य न अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा, केवल बंगाली में नहीं सारे भारतवर्ष में, और सारे भारतवर्ष में नहीं पश्चात देशों में इसका प्रचार, विशेष करके कैनेडा जहाँ है वहाँ के लोग धर्म भेद होते हैं और भगवान में उनका विश्वास होता है, और वो लोग करीब करीब हम लोगों से मिलते जुलते हैं, कहते हैं कि हम लोगों की है बेस्ट क्रिश्चियनिटी और वो लोग हैं निम्न कोटि के वैष्णव, उन लोगों को बतला रहे क्रिश्चियन वालों, क्योंकि वो भगवान में विश्वास रखते हैं।
हम लोग डॉलर में लिखा होता है ट्रस्ट इन गॉड,
यही नहीं भगवत विश्वास सब में होता है, इसलिए किसी देश में प्रचार होना हो अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि जहाँ जहाँ पर क्रिश्चियनिटी वहीं पर इसका प्रचार हुआ। स्वामी जी भी गए, पंत महाराज जी गए और उनकी बात वही लोग सुनेंगे। मुसलमान कभी नहीं सुन सकते, कभी सुनेंगे नहीं, दे अगर। इसलिए ये सब लोगों को स्वामी जी थोड़ा सा बेटर क्रिश्चियनिटी या क्या कहते थे, इसलिए उनकी बातें सुन सकते। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में प्रचार, कोई भी जोरदस्ती कर, जैसे बन महाराज जी को भेजा, भक्ति पंडित तीर्थ महाराज जी को भेजा, गोस्वामी महाराज को भेजा। प्रचार इन्होंने कुछ किया, किंतु जैसा प्रचार होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले से कहा था इनसे, स्वामी जी से, भक्ति वेदांत स्वामी जी, अभय चरणारविंद, तुम पाश्चात्य देश में प्रचार करना अंग्रेजी में। तो वही उनको याद थी, इसलिए पीछे से जाकर प्रभुपाद जी की प्रारंभ काल से भी इच्छा थी सर्वत्र विश्व भर में इसका प्रचार। तो उन्होंने अंग्रेजी में जब लॉर्ड चैतन्य लिखा, या फिर मुझे याद नहीं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि आज हमारा अरब खरबों रुपये का मंदिर बना है और इस मंदिर को ना कोई गिरा सकता है, ये जब तक रहेगी स्थिति तब तक ये ग्रंथ रहेगा, तब तक ये भगवान का मंदिर है, असल ये मंदिर है। उनकी विचारधारा जैसे श्रीमद् भागवत को आजकल कोई गिरा सकता है वो मंदिर को, ये मंदिर है भगवान का, इसको कोई नहीं गिरा, गीता को कोई नहीं गिरा, फिर यदि गिराया जाए कोई तेजस्वी पुरुष आकर तो फिर उसको प्रकाश कर ले। और उस पर कहते थे जैसे आज हमारा लाख रुपये का प्रचार, इसलिए उन्होंने संस्कृत में, अंग्रेजी में हारमोनियम और संस्कृत में, संस्कृत में पत्रिका, फिर तमिल भाषा, तेलुगु में, असमिया भाषा में और भी कितनी भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं और हमारे गोस्वामियों का ग्रंथों का प्रकाशन करके एक एक ब्रह्मचारी को फिर संन्यास दिया। छोटे छोटे बालकों को, जैसे अभी तुम लोग आए हैं, देखो सब नवजीवक लड़के, ऐसा नहीं मनुष्य की बात नहीं है, बुढ़े वो कहते हैं निस्तेज हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी नहीं होती नहीं है। इसलिए नवजीवकों को आकर्षण करके और उनको ब्रह्मचारी और फिर संन्यास दिया, वृक्ष तेजस्वी सब ये सब हुए और जाकर के सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। बन महाराज जी का नाम सुना होगा, उनका नाम था ब्रह्मचारी का याद है
कि सुनो
दोनों अभी बन महाराज जी बहुत पहले पतले एकदम दुबले और श्यामले रंग थे, ये लंबे चौड़े थे ब्रह्मचारी गौरगढ़ में। तो काशी ने इनको प्रचार के लिए भेज दिया प्रभुपाद जी ने, ये लोग ढूंढ ढूंढ करके अक्षुत विद्वान उनके पास में जाए। तो एक दिन खोलते खोलते वहां के संस्कृत कॉलेज के तो प्रिंसिपल थे और बहुत नाम उनका था, उनको गवर्नमेंट के तरफ से कुछ उनको पदवी मिली थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा है,
मदन मोहन
मालवीय नहीं, उनसे पहले की बात, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें संस्कृत में लिखी, आठ वर्ष के वो माने जाने थे। उस समय उनकी उम्र बहुत काफी हो गई थी, 80 वर्ष की थी, तभी वो वहां पर प्रिंसिपल थे। तो ये लोग खुद से खुलते उनके घर पर चले गए, जाकर के वो नॉकडाउन कुछ किया तो घर से कोई निकल करके दरवाजा खोल दिया, देखा जैसे बड़े अच्छे से ये बच्चे ब्रह्मचारी आए हैं, लाल कपड़े में दोनों, दरवाजा खोल कर लेकर के उनके ड्राइंग रूम में बैठाया। बैठाने के बाद में उन्होंने कहा कि किस लिए आए हो, तो हम लोग उनसे थोड़ा सा मिलना चाहते पंडित जी, जिसमें कल्याण में उनके बड़े बड़े आर्टिकल आते वो मास्क थे, सबकी पूजा करने वाले और सबका मन रखने वाले। तो इनके घर पर पहुंच करके सब उनको ड्राइंग में बैठा दिया। तो वो पंडित जी स्नान स्नान करके पूजा पाठ करके इनके पास में आए। उन्होंने कहा अरे तुम लोग कहाँ से आया है, कहाँ रहता है? तो उनका कहना कोई बुरा नहीं, क्योंकि वो लोग बच्चे थे, ये बुद्धे थे, इस्लाम तो थे ही। तुम लोग कहाँ से आया? हम लोग मायापुर से आए। ओ तुम लोग वो सिद्धांत सरस्वती के यहाँ से आया है जो शूद्रों को भी वो
धागा देकर के
लपेट देता है और उनको कहता है तुम ब्राह्मण हो गया। और वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार में वंश परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानता है, उसके यहाँ से आया है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग मायापुर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा जो कह रहे हैं जो वंश परंपरा से, तो वंश परंपरा से ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सब होते हैं किसी जगह इसका प्रमाण है? हमें गीता नहीं है चतुर वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। भगवान ने पूर्व जन्मों के कर्मों को देख करके उसी के अनुसार में इस जन्म में ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में जन्म दिया है, ये तो उसी में है। इसी श्लोक में तो यह है कि किसी का जन्म के साथ में उसका निरूपण नहीं किया जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय का। गुण कर्म विभाग का, जिसका गुण जैसा है वैसा ही उसको जाति निरूपित होगी। जैसे वेदांत की बात मत करो, उन्होंने कहा जैसे आप पहले इस चीज को सुनिए, आप जो कह रहे हैं ये श्लोक, इसी श्लोक का अर्थ ऐसा क्यों करते हैं? भागवत में कहते हैं जस्य जल लक्षणम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम् जगन्नाथ अन्यत्र अपि दृश्यते
सत्ये सत्यमेव विनिर्दिश्यते
सत्ये विनिर्दिश्यते। अर्थात श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन किया गया है ये ब्राह्मण जाति के ये लक्षण, ये क्षत्रिय जाति के लक्षण, ये वैश्य के लक्षण और ये शूद्र के लक्षण। इसके बाद में लड़का जन्म हुआ किसी का तो वो पूर्व ये जो दिखा गया है भागवत में उनको मिलाकर के देखा जाएगा, उसका संस्कार कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, इस जन्म के समय से फिर उसका संस्कार कैसा हुआ है, और फिर गुण और कर्म विचार करके ये होगा। जैसे रावण ब्राह्मण का लड़का होने पर भी ब्राह्मण न मान करके उसको दैत्य दान माना, जैसे नारद जी शूद्र की स्त्री से पैदा हुए थे किंतु उनको ब्राह्मणों का भी गुरु माने थे। गौतम जराला एक लड़का था, वो गया गौतम ऋषि के यहाँ वेद पढ़ने के लिए। तो ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा ये गोत्र तो मुझे मालूम नहीं और पिता का नाम भी मालूम नहीं, मैया ने हमारा पालन पोषण किया, इसके बाद में हमको तो पता नहीं। अच्छा तुम जाओ अपनी मैया से पूछ करके आओ ये तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो वो बच्चा चला गया मैया से पूछा कि हमारा गोत्र क्या है, इसी कारण ऐसे पढ़ा नहीं रहे हैं और हमारे पिताजी का नाम बतलाओ। तो उन्होंने कहा उसकी मैया ने उधर क्या देख रहा है, बंदर आ गया है, बंदर आया ना। तो उन्होंने कहा
माता जी के पास गए।
हाँ ठीक। तो माता जी ने उनको बताया ये बेटा मैं युवावस्था में जरी चाल रही थी, तुम किनके किनसे पैदा हुआ मुझको पता नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता का नाम और तुम्हारा गोत्र मैं नहीं बतला। तुम कह देना यही ये माता की न्यायकारी कहा है, हम माता के पुत्र हैं, आप हमको बेटी शिक्षा। तो वो जाकर के हाथ जोड़ करके ऋषि के चरणों में गिर करके बोला कि माता जी से मैंने पूछा तो माता जी ने ऐसा कहा, ओ तू इतना सत्यवादी है तो जरूर ब्राह्मण का लेना। उनको जगह से भी दे करके और उनको देदर्शन था, तब से उनका नाम हो गया
जवाला।
उनकी मैया का नाम था जवाला, उसी का ये सत्य काम सत्य वक्ता पुत्र हुआ। और वो फिर उनका गोत्र बना, जो गौतम जी का जो गोत्र था अपने गुरु के अनुसार नियुक्त कर दिया। इसी तरह से एक दो नहीं,
2500
अगस्त ऋषि भी कलश से हुए,
गौतम ऋषि 66 से।
हमारे व्यास जी कोई पिता का ठीक नहीं, सत्यवती उर्वशी की लड़की। इस तरह से इनका कोई ठीक नहीं, किंतु ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। इसलिए इस तरह से जब उनको बतलाया था कि आप कोई भी उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखे, पसीने से कम सरबर हो गए और जो खड़े बातचीत कर रहे थे वो कुर्सी पर आकर धम से गिर गए। तो उनकी पत्नी दौड़ी आई है, अरे ब्रह्मचारी तुम लोग चले जाओ, नहीं चाहिए मर जाएगा बूढ़ा, इसको मारो मत। अंत में वो चले गए। ऐसे ऐसे विद्वानों से भी छक्के चुरा दिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, हमारे जैसे अनपढ़ कभी अक्षर से संबंध नहीं। प्रभुपाद के आदेश से वो गए थे बंगाल में प्रचार करने के लिए, उनके साथ में हम लोगों के नरसिंह महाराज और सब लोग थे। किंतु शब्द का इतना बड़ा भंडार था, अद्वैत ज्ञान तत्व से नीचे कुछ बोलते ही नहीं थे। अद्वैत ज्ञान और वेदांत के सब उनको एक बार जो सुन लेते थे उनको याद, और भागवत के बड़े वक्ता भागवत पढ़ नहीं सकते, किंतु जो श्लोक उनको याद हो गए कंठ गौड़ीय कंठा सब उनको मुखर। इसलिए जब जाते थे, जब खड़े होकर के दंड लेकर के जब वक्तिका देते थे, सब लोग स्तंभित हो जाते, खूब भारी विद्वान। इसी विषय में चर्चा हुई एक जगह, लोगों ने उनको चैलेंज दे दिया, या प्रमाण कीजिए कल सभा होगी, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, आप भी उसमें आएंगे और उसमें भाग, उसमें विचार। अधिकांश उस समय में ब्राह्मण वैष्णव का ही विचार होता था समाप्त हो। प्रभुपाद जी ये सब का खंडन करके शुद्ध भक्ति की प्रतीक्षा करना चाहते, इसलिए यही हुआ। तो वहां पर अब कल सभा होगी तो नरसिंह महाराज जी को वो जानते हो कैसे आदमी थे, शौकीन भी बड़े थे। उनकी जब पूरी बनती थी खाने की, तो 1 किलो घी में जो पहली और दूसरी पूरी होती, तीसरी पूरी उसमें नहीं होगी, फिर नए घी में होगी। तो वो इन लोगों से कहा ब्रह्मचारी जाओ 100 ईंट ले आओ नया नया। अभी क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ले आओ तो तुम पीछे हम बतलाएंगे जो किस लिए मंगाए। बस वो लोग ईंट ले आए, अरे जाओ बड़े बड़े कागज ले आओ, अच्छा और कागज इस पर लिखो यजुर्वेद, इस पर लिखो सामवेद, इस पर लिखो छंद उपनिषद, इसमें लिखो कि वाल्मीकि संहिता इत्यादि, मन स्मृति ये श्रीमद् भागवत, और इसो के कागजों पर लिख करके और सबको गाड़ी में सजाओ और गाड़ी समेत हमारी चलेगी वहां। बस लेकर के गाड़ी पर लगवा करके दूसरे दिन सभा स्थल में जाकर के उनको ऊपर से लेकर के इधर उधर चारो सब सब आया है। और तो आ करके और बड़े फाट से बैठ गए, जाओ इनको बुलाओ, आते क्यों नहीं, बड़े बड़े पंडित आए, देखा जैसे ही तो कहां कहां से वेद पंडित शास्त्र और फिर इन्होंने चैलेंज किया, ये हमारे पास में ये प्रमाण है, हम साथ साथ में दिखाएंगे जो हम कहेंगे, आप लोग भी ये सब वेद उपनिषद है, आप लोग उसमें से बाहर करके हमको दिखाएंगे अपना प्रमाण। और वक्तिका देने लगे, बस इसमें सब की सतर्क गई और सब करके मारे भाग गए, कोई उनसे विचार नहीं। ऐसे से ब्रह्मधर लोग थे, जने जने शक्ति भरे ब्रह्मांड में
सारे। आपके नाम के लोग
भक्ति क्या अरण्य महाराज अभी हाल तक थे। गुरु महाराज जी से उनकी बड़ी बात विनोद होता था, अरण्य रोदन से प्याला गुरु महाराज जी करते थे। और वो कहते थे कैसा हो तू, हाँ जगत विचित्र। गुरु भाइयों का परस्पर विनोद भी देखने लगा। गिरि महाराज से गिरि महाराज प्रभुपाद के थे, उसे गुरु महाराज का विनोद होता। देखो गिरि, आप थोड़ा सा हमारे ऊपर में गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, तो डर जाऊंगा। अजय केशव तुम नहीं दिख मारा कि ऐसे बने, ऐसा सुंदर सुंदर दिनों की देखने
दुनिया
में कैसा ये। तो वो ऐसे ऐसे भयंकर लोग थे, उनके एक शिष्य थे छोटा सा सबसे कनिष्ठ शिष्य, उसका सिद्ध स्वरूप नाम। तो वो नेमि महाराज के साथ में प्रचार करने के लिए गए गए भाका इत्यादि नैनन सिंह इत्यादि में, खूब जोरों से बड़े बड़े विद्वान पंडित उधर में पूर्व बंगाल में बड़े बड़े विद्वान लोग, पश्चिम बंगाल में कम, जितने बड़े बड़े ये सब वैज्ञानिक विद्वान वकील और सब सब उधर के, हमारे गुरु महाराज जी उधर ही थे, जितना अभिकांत भारती महाराज इत्यादि सब लोग उधर ही थे। गुरु जी के प्रभुपाद जी के समय अधिकांश वहीं से सब लोग, और गुरु जी के समय में मेदिनीपुर के, मेदिनीपुर एक एरिया उनका खाना पीना का चावल चावल और जितना चीज सब मेदिनीपुर का बने। हम लोग छिटकेपुर के इधर से बनते, वो उनको भेजा तो वहां नैनी महाराज भक्ति का प्रभारी विद्वान आदमी, वो जब गाते थे अन्यनंदम बंदे एक हाथ ऊपर उठ जाते, कृष्ण परे कृष्ण करे भारत मन ने भजन भाव गीता अन्यनंद खूब जोर से अन्यनंद गौर कांति बड़े अद्भुत विद्वान पड़े। विद्वानों की सभा में नैनी महाराज को और साधारणों की सभा में भारती महाराज जी को भेजते। भारती महाराज मुर्दे को भी हटा देते थे, जहाँ वो मंच पर खड़े हो गए सब लोग, और जहाँ पर की हजारों आदमी रहे वो एक हाथ ऊंचे रहते थे, इतने लंबे थे। वही ब्रह्मचारी उनके साथ में गए, कार्यक्रम में खूब प्रचार हो रहा, एक बड़े साउंड में लेक्चर हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी कुछ बस सिद्ध स्वरूप खड़े होकर के, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे सब बच्चे बोलते हैं, और उस समय में ऐसा ही सब शिक्षा था, सब लोग सीखते थे, बड़े उत्कंठ आते सब सीखने, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान वक्ता सब हो गए। तो उनको कह दिया तो वो उठ करके खड़े हुए, उठ करके सब तो सब बोलने के बाद में सब उन्होंने कुछ, उस समय में रविन्द्रनाथ ठाकुर खूब प्रसिद्ध थे, तो उनको राम खाग कह दिया। ये राम खाग, राम खाग माने
बकरा,
बकरा जैसे दाढ़ी ऐसे ही लाता है ना, उनका साहित्य राम खाग का केवल रसोई घर में महिलाओं के यहाँ बिक्री हो सकता है, विद्वत समय में नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति का कुछ भी उनमें नहीं, जो कुछ लिया है उन्होंने दूसरे संस्कृतियों से, विशेष करके पाश्चात्य ये एकदम खुली सभा में कह दिया। अब तो सुन करके सब लोग जितने हैं साधारण एकदम बिगड़ गए, हो हल्ला कर दिया, सभा बिगड़। हमारे नैनी महाराज ने तुमने क्या कर दिया, तो हमने क्या गलती कहा, तो गलती तो तुमने नहीं कहा, ठीक कहा, किंतु देख सुन करके गाते करने निरपेक्ष, अभी सत्तर लोग नहीं समझेंगे, आपके लिए कह दिया, इसलिए सब बिगड़ गए। और प्रचार प्रचार के लिए सब चौपट कर, और प्रभुपाद जी को टेलीग्राम दिया कि बना बनाई सब चौपट कर दिया, ये प्रचार बड़ा सुंदर हो रहा था और इसने ऐसा कर दिया कि अब कोई आता नहीं है न सुनता है। प्रभुपाद के पास में टेलीग्राम, ये अब क्या करें। तो प्रभुपाद ने टेलीग्राम का उत्तर दिया, मैं खुद आ रहा हूँ, आशीष दशरूप ने हमारे कोटि रुपए का प्रचार किया है, हम ऐसा ही प्रचार करते हैं, लोग नहीं समझेंगे तो वो बिगड़ेंगे। तो आज एक उनमें क्यूरियोसिटी की उत्सुकता तो पैदा किया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अंततः एक तो ये तो किया कि सब सब लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा सपन है और बहुत अच्छा प्रचार हुआ है। ऐलान कर दो, जैसे कल हम हमारे कर्मचारी ने जो कुछ कहा है उसके विरुद्ध में यदि किसी को कुछ बोलना है तब आकर के उस सभा में सब लोग आए और वहां पर बोले जैसे क्या इसने गलत कहा है या क्या। बस प्रभुपाद जी उपस्थित हो गए, वहां पर पहुंचे, विराट सभा हुई, वो लोग आए, प्रभुपाद जी उसका से जब भाषण देना आरंभ किया एकदम सब मैंने समझाया जी ये ठीक कहा। छागल किसको कहते हैं, जहां जो कुछ मिल गया वही, पत्ती मिल गई पत्ती ले लिया, कपड़ा मिल गया कपड़ा, कोई बुरी चीज मिल गई उसको भी जहां कहां गाल मार लिया, इसको कहते हैं छागल। यदि हमारे शास्त्रों से भगवान का भजन किया फिर तो और जो दूसरों में नाच गान तमाशा यही सिखाना जरूरी है, को एडुकेशन उन्होंने किया था लड़कियों का और लड़का, कलकत्ता में शांति निकेतन और गांधी जी जवाहरलाल साहब उनके चरण में जीते।